چلیے آگے دیکھتے ہیں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة, اور عورتوں کو ان کے مہر دل کی خوشی سے دو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا, پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے تمہیں کچھ دے دیں تو اس کو خوش مزہ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ. یہ آیت حق مہر کے بارے میں. اسلام عورتوں کو حقوق دلا رہا ہے, مختلف حقوق کی بات میں ایک حق حق مہر کا ہے. اس کے لیے یہاں لفظ استعمال کیا گیا صدقہ. اس لفظ کو پروناؤنس کرتے ہوئے ذرا احتیاط کیجئے گا کہ یہ لفظ صدقہ نہیں ہے. اردو میں جو لفظ کا, بعض لوگ اس لفظ کو غلط پڑھ کے پھر یہی سوچتے ہیں کہ عورتوں کو صدقہ دو. نہیں, صدقہ اس کا روٹ سواد دال اور قاف ہے, صدق سے ہے. یہ حق مہر کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرد اس شادی کے کرنے میں سچا ہے, اور اس لیے بھی کہ یہ مرد اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہے. یہ ایک ٹوکن منی ہے اس چیز کی کہ مرد عورت کی ذمہ داریاں زندگی بھر اٹھائے گا. اس کو اردو میں حق مہر کہتے ہیں, اور عربی میں صدقہ کا لفظ آیا. سورت بقرہ میں اس کے لیے لفظ فریضہ پڑھ چکے. یہاں شوہر کو کہا گیا کہ دیکھو دل کی خوشی سے دو, عورت کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی دے دو, اسے مصیبت نہ سمجھو, احسان نہ جتلاؤ, اور عورت کے حق مہر مانگنے کو طلاق مانگنا نہ سمجھو. کیونکہ ہمارے ہاں تو عموماً یہ بھی بات ہے نا, جب کوئی عورت حق مہر مانگتی ہے تو لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید اب اس کو یہاں رہنا نہیں. اس پہ ہم بات کر چکے کچھ سورہ بقرہ کی میں بھی, لیکن صرف تذکیر کے لیے اور بات کو سمجھنے کے لیے, حق مہر جو ہے نکاح کے وقت میں صرف چند پوائنٹس میں بات کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حق مہر کی بات کی, اور یہ چیز نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. حق مہر کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو حلال بنانے کے لیے خاوند جو مال دیتا ہے وہ مہر ہے. یہ واجب ہے اور فرض ہے. اسی آیت کی روشنی, آدو امر ہے, یہ حکم ہے, یہ خوشی سے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التمس ولو خاتم من حدید, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, مہر کے لیے کچھ تلاش کرو چاہے لوہے کی انگوٹھی. یہ بھی ضروری ہے, کچھ ہو چاہے معمول. پھر کم مہر پسندیدہ ہے. آپ نے فرمایا, اعظم النساء برکتن ایسرہن مؤنتن, وہ عورت سب سے زیادہ برکت ہے جس کا حصول آسانی سے ہو. آج ہم نے اتنے مشکل بنا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق مہر 400 یا 500 درہم تک رکھتے تھے. پھر ایک اور چیز حق مہر کے ناطے سے, نکاح کے وقت مہر کا تذکرہ کرنا مسنون ہے. پھر اسی طرح چوتھائی دینار, یعنی چوتھائی دینار بس ایک اشارہ ہے, یعنی کچھ نہ کچھ ضرور ہو, یہ مباح ہے. پھر اسی طرح مہر نکاح کے ساتھ ہی ادا کر دیا جائے تو صحیح ہے, یا اس کا کچھ حصہ دے یا کچھ حصہ بعد میں دیا جائے اور چلے گی, ہر طرح سے اجازت ہے. سورۃ طلاق آیت 238 میں آتا ہے, اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیتے ہو اور ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو, یعنی ابھی دیا نہیں تو دینا ہے. اسی طرح عورت اور مرد, یعنی شوہر اور بیوی آپس میں ملنے سے پہلے اگر کوئی چیز تحفے کے طور پر دیں تو یہ مستحب ہے. اس کی روایت کیا ہے؟ ابو داؤد اور ترمذی کی ایک روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا, یعنی جب شادی کے بعد آپ ان کے گھر میں گئے, کہا مجامعت سے پہلے فاطمہ کو کچھ دے رضی اللہ عنہا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. آپ نے فرمایا, تیری زرہ کہاں ہے؟ چنانچہ اب پھر اسی طرح عقد نکاح, یعنی نکاح کی جو گرہ ہے, اس سے مہر مرد کے ذمے ثابت ہو جاتا ہے, اور جب وہ اسے تعلق قائم کر لیتا ہے تو واجب الادا ہے, یعنی اس کو دینا پڑے گا, اب اس پہ ایک وہ قرض ہے. اگر ताल्लुक कायम करने से पहले तलाक देगा तो निस्फ मेहर उसको वापस करेगा, पीछे हम पढ़ चुके ये सूरह बकरा में, और निस्फ बाद में देगा यानी देगा। और इसी तरह से अगर दे चुका था तो फिर औरत से आधा वापस भी लिया जा सकता है। अब देखिए कि मेहर औरत की कीमत नहीं है, एक हदिया है, एक तोहफा है, शोहर की तरफ से एक वेलकम है। दूसरी बात यह है कि मेहर औरत को दिया जाएगा, उसके घर वालों को नहीं। आज भी कुछ कबाइल में ये रस्म मौजूद है कि मेहर लड़की के माँ बाप को दिया जाता है, और हमारे यहाँ ये बात मारूफ हो जाती है कि इन्होंने लड़की को बेच दिया। वो बेचते नहीं है, मेहर खुद रखते हैं, ये जायज नहीं है, ये लड़की की चीज है, उसी को मिलनी चाहिए। इसीलिए वह आतुन्निसा सदुकातिहिन्न निखला की बात दूसरी तफसीर ये भी की गई कि माँ बाप को कहा जा रहा है कि ये लड़की का हक है और तुम न लो। इसी लेवल पे देखें तो ये गार्डियंस को कहा जा रहा है। यतीम बच्चों और बच्चियों के वारिस बनते, शादी करके मेहर ना देते तो कहा उन औरतों को दे दो। और सदुकात जो है ये सदुकतुन की जमा है, सच्चाई इसके अंदर छुपी हुई है, किसी मर्द के सिंसियर होने की, सीरियस होने की ये निशानी है। एक छोटी सी बात है कि मेहर कितना हो, तो मेहर के लिए कोई एक खास हद तो नहीं, लेकिन पीछे की आयतों को भी हमने देखा था कि इसने जैसी मर्द की कमाई है, ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम, दोनों तरह से पसंदीदा है, लेकिन इसकी कोई एक हद मुकर्रर नहीं की गई। मेहर निकाह के अरकान में से एक रुकन है। रुकन क्या? जैसे आपके टेबल की एक टांग, टांग उतार दें तो टेबल गिर जाएगा, इस तरह मेहर के बगैर किया हुआ निकाह सिफाख कहलाता है, यानी जिना की एक किस्म है सिफाख। इसलिए अगर मेहर का जिक्र नहीं किया जाता तो वो निकाह नहीं होता। बहुत सारी औरतों को पता ही नहीं होता कि हमें अल्लाह ताला ने ये हक दिया है और हुक्म दिया है, इसीलिए फिर इस चीज से वो फायदा नहीं उठा सकती। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा था कि आपका हक मेहर कितना था, तो कहने लगी 12 उकिया चांदी या 500 दिरहम। और नश, पूछा नश क्या है, कहा आधा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का हक मेहर आधा होता था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, देखो औरतों के मेहर ज्यादा न बांधा करो, अगर ये फखर की बात होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों और बेटियों के हक मेहर ज्यादा बांधते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने एक मौके पे कोशिश की थी कम करने की, क्योंकि लोगों ने इसको प्रेस्टीज मैटर बना लिया, ज्यादा ज्यादा हक मेहर बांधने लगे, तो आपने कहा कि आज के बाद 400 दिरहम से ज्यादा कोई नहीं बांधेगा। तो उस औरत ने खड़े होकर कहा कि उमर आप ये कैसे कह सकते हैं, अल्लाह ताला ने तो तलाक के चैप्टर में ये कहा है कि वइन आतैतहुन्न किन्तारन, अगर आपने उनको एक किन्तार भी दिया, खजाना दिया, तो भी तलाक की सूरत में वापिस नहीं ले सकते, तो वापिस लेने से मना है लेकिन देने में तो कोई कैद नहीं। तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने इस बात को समझा और दोबारा फिर अनाउंस कर दी ये बात कि आज के बाद कोई जितना मर्जी दे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। एक छोटी सी बात है कि हमारे यहाँ पे ये 32.5 रुपए कैसे हुए, और यहाँ रहते हुए अगर कहें तो 50 सेंट्स कैसे हो गए। तो हकीकत ये कि किसी दौर के लोगों ने, उलमा ने उस दौर में 500 दिरहम चांदी की कीमत निकाली होगी, और ये वो वक्त था कि जब घी 1 रुपए का 4 किलो मिल जाता था, और वो भी देसी। मुलाजमों की तनख्वाह 2 रुपए महीने से लेके 4 रुपए तक होती थी, सोना 5 रुपए तोला होता था। अगर उस वक्त कोई वाकई हिसाब करता तो वो 32 रुपए ही बनते, लेकिन आज तो वो हजारों में चला गया, तो 32 के ऊपर अब सिफर लगाने की जरूरत है, जितने भी उस दौर का हक हो। हम आयत को देखते हैं, वा आतुन निसा, और दो औरतों का तिहिन्न नहला, उनके सदकात उनकी यानी उनके हक में खुशी से, नहला यानी दिल की खुशी से, यानी मारे बांधे ना दो, जबरदस्ती माफ ना कराओ, बल्कि दिल की खुशी से दे दो। लेकिन ये पहली सूरत थी। दूसरी सूरत क्या है, फाइन तिबना लकुम, और अगर वो खुशी से तुमको दे दे, तिबना तैयब से है तो याबा, अपनी खुशी से वो तुम्हें दे दें कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, या हम साथ ही रहते हैं और एक ही घर में और मुझे कोई तराज नहीं, तो फिर तुम ले लो। अन शय मिनहु, पूरा दे दें या उसमें से कुछ हिस्सा भी दे दें तो तुम ले लो, और क्या करो, फकुलूहू, फिर खाओ उसको, हनीयम मरिया, मजे लेकर खाओ। हनीयम मरिया में फर्क क्या है, हनीयन होता है जो खाने में अच्छा रहे, लज्जत में, टेस्ट में अच्छा था। और मरियन क्या है, जो खाने के बाद भी जिस्म को अच्छा लगे। मतलब आप कोई खाना खाते हैं, वो खाने में भी अच्छा टेस्ट देता है लेकिन बाद में अच्छा टेस्ट नहीं देता, स्टमक जलता है। और खास तौर पे हमारे खाने बाद में मिर्ची से पेट भी जलता है और होता है। तो वो हनीयन तो है लेकिन मरियन नहीं है। लेकिन बात खाने हैं जो खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं और बाद में डाइजेस्ट भी अच्छी तरह होते हैं, एनर्जी मिलती है, एनर्जेटिक है, न्यूट्रिशियस है ज्यादा उसके अंदर, यानी तवनाई है, ताकत है, हरियन है। मतलब क्या है, ये एक मुहावरा बोला गया कि इसको खुशी से खाओ, यानी इस पे दिल में बोझ ना लो। अगर बीवी दे देती है तुम्हें वापस और उसको जरूरत नहीं और आपस की मुफाहमत है, कोई किसी के साथ मामला नहीं करता बुरा, तो तुम्हें इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। हनीयन सिर्फ मुशब्बा है, जो खाना लजीज हो और तबीयत उसे खुशी से कबूल करे। और मरियन कहते हैं जो हजम होकर बदन का हिस्सा बने और कुव्वत का सबब बने। सवाल पैदा होता है कि औरत मेहर जब वापस करती है तो दैट मीन कि ये उस औरत का है। मेहर की मनी औरत की होती है, ना उसके घर वाले ले सकते हैं ना शोहर के घर वाले ले सकते हैं। यहाँ भी हमारे यहाँ बड़ी कबाखते हैं, लोग बड़े बड़े हक मेहर लिखवाते हैं और बाद में देते नहीं, या अगर शादी के मौके पे जेवरात दिए और अगले ही दिन उतरवा लिए, ये सब जुल्म होगा। एक और चीज हक मेहर के नाते से कहूंगी, निकाहे शिगार, सट्टा कहते हैं इसका रिवाज था अरब में। करते क्या थे कि दो लड़कियां और दो लड़के लेते जो आपस में भाई बहन भी होते, और इस तरह एक की बहन का निकाह दूसरे से और दूसरे की का उससे होता। करते क्या थे कि दोनों औरतों को हक मेहर नहीं देते थे, कहते थे ना इसको हम देते ना तुम उसको दो, ये निकाह हराम कर दिया गया। लेकिन अगर आज के दौर में अगर निकाह दोनों के दिए जाते हैं, हक मेहर दिया जाता है, तो फिर इजाजत है लेकिन पसंदीदा नहीं, बचना बेहतर है। एक घर में खराबी आती है तो दूसरे घर में भी जाने लगती है। अब यह एक सवाल है कि औरत को आपने हक मेहर दे दिया, औरत ने वापस लिया तो क्या आप ले लें, क्या ये जायज है? हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है, तोहफा देकर वापस लेना ऐसे है जैसे कुत्ते का कह करके चाट लेना। तो इसमें सवाल ये कि खुद नहीं मांगना या ऐसे हालात नहीं बनाने कि औरत मजबूर हो के आपको दे दे, लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से देती है तो वो ठीक है। फिर एक सवाल है कि क्या औरत मेहर की मनी अपनी पसंद से खर्च कर सकती है? कर सकती है, मशवरा कर लेगी तो बेहतर है, कर सकती है। एक सवाल है, किसी ने एक सवाल किया कि औरत जैसे हक मेहर की कमाई जो होती है उससे एक फ्लैट खरीद लिया गया, किराए पे चढ़ा लिया, उसका किराया घर में आता रहा, दोनों इस्तेमाल करते रहे, माशी हालात खराब थे। अब हालात दुरुस्त हो गए हैं लेकिन शोहर फिर भी वो किराया बीवी को नहीं देते, तो क्या वो औरत मांग सकती है या वो पिछले सालों का मांग सकती है जो उसने 8-10 साल से खाया है? तो देखिए, अब का तो मांग सकती है लेकिन पिछला तो दोनों ने मिलके खा लिया ना, वो इसी में आ जाएगा, फाइन तिब न लगू। जब आम हालात में अच्छे दिनों में मिलके दिया तो अब वो कहाँ से एकदम वो 8-10 लाख रुपया लाएगा। हाँ, अगर देते वक्त ये कह दिया था कि कर्ज की सूरत में दे रही हूँ और जब अच्छे हालात आएंगे तो फिर ले लिया जाएगा, तो फिर इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हक मेहर दिलवा के औरत को अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन दी। क्यों दिलवाया? पहली बात है, मर्द की तरफ से एक तोहफा है, एक वेलकम है। दूसरी बात यह है कि औरत घर वालों को जब छोड़ती है तो एक थोड़ा सा दिल पे चोट पड़ती है, तो उसको एक ऐसे बहला दिया जैसे हम बच्चों को चीजों से बहलाते हैं, और औरतें तो बहुत ही जल्दी बहल जाती हैं इन चीजों से। तीसरी चीज है कि औरत चूंकि खुदा न खास्ता बाद में अगर कहीं तलाक की या कोई ऐसी कैफियत आती है, और औरतें अमूमन नहीं कमाती, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज उनके हाथ में होनी चाहिए किंतु दोबारा कहीं और शादी होने तक वो अपना गुजारा जो है वो कर सके। और इससे अल्लाह ताला के ऊपर मोहब्बत भी आती है कि उसने हमें कितना प्यारा दीन दिया। फिर फरमाया, वला तु सुफहा अमवालकुम अल्लती जालल्लाहु लकुम कियामं वरजुकूहुम फीहा वक्सूहुम वकूलू लहुम कौलम मारूफा। और नादानों को अपना वो माल ना दो जिसको अल्लाह ने तुम्हारे लिए कयाम का जरिया बनाया है, और इस माल में से इनको खिलाओ और पहनाओ और इनसे भलाई की बात कहो। औरतों को हक मेहर देने के बाद अब एकदम सुफहा को माल ना देने की बात की गई तो सवाल पैदा होता है कि सफीह कौन है, सुफहा कौन है। पिछले आयतों को साथ मिलाएं तो इससे मुराद वो यतीम बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे। बस दफा जब दुनिया से माँ बाप जाते हैं तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उसके बाद उनका माल बड़ों के पास आता है। अब वो माल उनको वापस देने से पहले देख लिया जाए कि क्या वो इस माल की हिफाजत कर सकेंगे। तो सुफहा सफीहुन से है, इससे मुराद टैक्स के एतबार से देखा जाए तो यतीम बच्चे हैं, लेकिन फिर इससे मुराद हर वो इंसान है जो माल को संभाल के ना रखे, और वो बीवी भी हो सकती है कि जिसको खर्च करना नहीं आती, तन्हा 15 दिन में खर्च करके कहती है कि अब कहाँ से खर्च खाए। जैसी बीवी को फिर पैसा हाथ में देने की बजाय अगर उसको माल देने चीजें लाके दे दी जाए तो या तो सुफहा अमवालकुम अल्लती जालल्लाहु लकुम कियामा। यह लफ्ज काबिले गौर है, कियामा के माल तुम्हारे कायम रहने का एक जरिया है, यानी माल तुम्हारे कयाम की चीज है, जिंदगी कायम रखने का जरिया है। यहां से माल की हैसियत क्या है हमारे जिंदगी में वो पता चलती है, और वो क्या है कि माल ना तो ऐश के लिए है और ना इजहारे फखर के लिए, बल्कि ये इंसान की जिंदगी गुजारने का जरिया है, इस दुनिया में उसके क्याम और बका की चीज है। माल का जरिया जिंदगी होना क्या जाहिर करता है कि इसको मकसद बना लेना दुरुस्त नहीं। बाज लोगों ने अपनी जिंदगी का मकसद माल बना लिया, हालांकि यहाँ अल्लाह सुब्हान तआला बात इससे ऑपोजिट कर रहे हैं कि तुम माल को अपना मकसद ना बनाओ, बल्कि माल का मकसद है कि वो तुम्हारी जिंदगी को कायम रखे। तो पहली चीज इससे क्या पता चली कि माल गुजरान का होना चाहिए, गुजारे की चीज है, जरूरत की चीज है, जिंदगी का मकसद नहीं। हम दुनिया में माल कमाने नहीं आए, माल जमा करने नहीं आए, बल्कि हम दुनिया में किस लिए आए, कुछ और करें। हाँ, गुजारे की चीजें अल्लाह ताला ने हमें सामान जो है वो दे दिया। दूसरी ये बात पता चली शायद से कि माल को जाया करना पसंदीदा नहीं। अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, उसमें से अगर आप एक छोटी से छोटी पैनी को भी जाया करते हैं और एक चावल के दाने को भी अपनी मर्जी से फेंकते हैं तो ये ना शुक्री होगी ना कदरी होगी। आपसे ज्यादा है तो हकदार तक पहुंचा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो माल बचाते हुए मारा गया वो शहीद है। इससे भी माल की अहमियत पता चलती है। माल अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए एक जरिया तो बन जाता है, इसकी हिफाजत भी की जा सकती है, लेकिन इसको जिंदगी का मकसद नहीं बनाया जा सकता, ये मुराद है इसमें। फिर दूसरी बात इसमें कही गई कि तुम दूसरों को ना दो। क्या मतलब? इससे मुराद ये है कि जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको चीजें ना दो। माल के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निम्मा बिल माल सालेही लिरजुलिन सालेह। नेक फितरत इंसान के लिए माल अच्छी चीज है और अपोजिट भी है। माल के बारे में हमारे यहाँ बड़ी इफरात और तफरीत पाई जाती है, तो हकीकत यह है कि माल बुरी चीज नहीं, इससे नफरत नहीं करनी, बल्कि मोहब्बत से नफरत की बुनियाद माल नहीं है, अल्लाह की जात है। अगर आप कमाते हैं, जायज तरीके से कमाते हैं, हलाल से करते हैं, आपका ये अमल भी इबादत है। माल कमाएंगे, सदका देंगे, दर्जे बुलंद होंगे। जिनके पास नहीं आप उनकी मदद करेंगे, आपको फायदा होगा। माल क्या है? आपके लिए आखरत की कश्ती को चलाने का पानी है, आप ये कह लें। आज भी जिन इलाकों में गुर्बत है वहां आप जाके देखिए, लोग अपने बच्चों को बेचने को तैयार है। यूरोप में सरेआम औरतें आती हैं और अपने आप को बेचती हैं, 20-25 पौंड में अपने आप को बेच जाती हैं कि जो मर्जी हमारे साथ कर लो। के पास माल है उसको चाहिए कि हिफाजत कर दे, लुटाए नहीं, ऐश में ना गुजार दे के बहुत है, बल्कि उन लोगों को ढूंढे जिनके पास नहीं है, उन तक पहुंचा दे। क्योंकि सुफियान सॉरी है और कहते हैं कि कान अल मालू, माल माजी में बुरा समझा जाता था, लेकिन आज माल मोमिन की ढाल है। जिसके पास माल है उसे चाहिए कि हिफाजत करे, वरना यह है कि माल की वजह से लोग ईमान बेच देते हैं। बस लोगों ने यहाँ सुफहा के लफ्ज की तफसीर में औरतों का नाम ले दिया। तो याद रखिए कि हर औरत सफीह नहीं होती, कुछ बच्चे बड़ों से भी ज्यादा माल को संभाल के रखते हैं। तो ये देखा जाएगा कि कौन किस काबिल है। हाँ, देने से पहले करो क्या, वब्तलुल्यतामा, और आजमा लो यतीमों को, हत्ता ऐसा बलगुन निकाह, यहाँ तक के वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। फिर फाइन आनस तुम मिनहुम रुश्दा, फिर अगर तुम उनमें भलाई को पालो, रुश्द को पाओ, फदफाओ इलैहिम अमवालहुम, तो हवाले कर दो उनके माल, उनके उनके माल उनके हवाले कर दो। वला ताकुलूहा इसराफम वबिदारन, और ना खाओ उसको इसराफ करते हुए और जल्दी जल्दी, इस डर से कि अई यकबरू, के वो बड़े हो जाएंगे। इस डर से माल ना खा लो सारा के बड़े होने से पहले कह दें कि सारा माल तो जी इनकी देखभाल पे लग गया। फिर सवाल उठता है कि क्या यतीमों की किफालत के पैसे लिए जा सकते हैं? आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं, क्या आप उनकी बेबी सिटिंग या उनके टेक केयर करने के ले सकते हैं? तो उसका जवाब दिया गया, वमन कान गनियन फल्यस्ताफिफ, और तुम में से जो माल वाला हो उसको तो चाहिए कि बच जाए, ना ले, खाता पीता है उसको कमी नहीं, तो यतीम के माल से कुछ ना ले। लेकिन वमन कान फकीरन, और जो कोई हो फकीर, गरीब, तंग दस्त, खुद ही उस हैंड टू माउथ है, अपने बच्चों को भी नहीं खिला सकता। अब एक यतीम बच्चा आ गया, साथ उसकी दौलत भी है, तो क्या करे? फल या कुल बिल मारूफ, तो चाहिए कि मारूफ तरीके से खा ले, फिर थोड़ा सा हिस्सा ले सकता है खिदमत के तौर पे, इसकी इजाजत है, रुख्सत है। फइजा दफा तुम इलैहिम अमवालहुम, फिर जब आप उनका माल उनके हवाले करो, तो फअशहिदू अलैहिम, तो उन पर गवाह बना लो, लोगों में से किसी को गवाह बना लो, लेन देन की बातें हैं, ताकि बाद में कोई बुरी बात न निकले। वकफा बिल्लाही हसीबा, वैसे तो हिसाब लेने के लिए अल्लाह ही काफी है। इस आयत में दो तीन बातें थी। पहली बात यह है कि किसी के माल को बेगार का माल समझ के जाया नहीं करना चाहिए, जिसको कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम, हमारे यहाँ होता है ना, ये मुफ्त की चीज है, इसकी क्या परवाह है, इस्तेमाल करो, कौन सा मालिक सामने है, कौन सा चीज जिसकी है वो सामने है, कर लो, ये दुरुस्त रवैया नहीं। इसलिए कि अल्लाह तो है, कल तो वो एक एक चीज को देखेगा तुमने किसी के साथ कैसा मामला किया। दूसरी बात इससे पता चलती है कि किसी को कोई चीज देने से पहले आजमा लेना चाहिए कि क्या वो इसको डिजर्व भी करता है, इसको संभाल भी सकता है। वब्तलुल्यतामा, आजमा लो, क्या चीज आजमा लो? पहली बात है कि क्या वो निकाह की उम्र को पहुंच गए, दूसरी बात है क्या उनके अंदर माल की हिफाजत का शऊर पैदा हो गया, तीसरी बात है क्या वो इस माल को आइंदा किसी अच्छे काम में लगाने के काबिल हो गए, या फिर उसके खिलौने खरीद के ले आएंगे या बेकार चीजें ले आएंगे। सवाल पैदा होता है ये उम्र कितनी है, तो इसकी मुख्तलिफ निशानियां हो सकती हैं, जैसे प्यूबर्टी की एज, एहतराम की उम्र, चेहरे पे बालों का आना, आवाज का बदलना, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। माल देने की दो शरायत आपने शायद में देखी, बलूगत और रुश्त। बाज दफा लोग बाले हो जाते हैं लेकिन अकल नाम को नहीं होती, वक्त से पहले अकलमंद हो जाते हैं, बालिग नहीं होते। तो पसंदीदा बात तो यह है कि दोनों चीजें आ जाए, लेकिन अगर बालिग कोई होता ही नहीं, यानी कोई मर्द है और उसमें वैसे तो माशाल्लाह जहनी पुख्तगी है, काम काज करता है, लेकिन उसमें बलूगत वाली निशानियां नहीं, या उसको हाजत नहीं, बीमारी भी हो सकती है, उसके अंदर वो चेंजेस नहीं आई अभी तक, तो उसको भी दिया जा सकता है, क्योंकि जिसका जो हुक्म है, जिससे रिलेटेड है, वो काम है ना। यहाँ कहा तो ये जा रहा है कि माल को लेन देन के वक्त ये देख लो। आप देख रहे हैं कि किस तरह एक से एक छोटी छोटी बात हमारे सामने आ रही है। और जैसे शुरू की आयत में हमने तफसील से देखा कि इस्लाम किस तरह से छोटी छोटी चीजों की हिफाजत करता है और हमें बताता है, अगर हम इन सब चीजों को ना समझते, ना पढ़ते, ना हमारी जिंदगी में आती, तो हम कितनी बड़ी बड़ी नेमतों से महरूम हो जाते। तो ये अल्लाह ताला की शान है, उसकी रहमत है कि उसने हमें ये सारी बातें सिखा दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि यतीमों के माल को तिजारत में लगाओ, कहीं ज़कात ही उनके माल को ना खा जाए। इसी तरह आप देखिए कि ये जो बात हुई ना कि माले यतीम की, यानी यतीम की किफालत पे पैसा ना लो, तो ये रूल दूसरी चीजों के लिए भी है। कोई शख्स किसी भी ऐसी जिम्मेदारी पे मौजूद है जहां वो दीन को कोई फायदा देता है, अब वो उस पे माल जरूरत का ले के ना ले, सवाल एक उठता है ना, क्या दीनी कामों का मुआवजा हम ले सकते हैं कि नहीं, तनहा ले सकते हैं कि नहीं, पे ले सकते हैं कि नहीं। तो उसके बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक अमल आपके पास रखूंगी। हजरत उमर जब तख्ते खिलाफत पर बैठे तो ऐलान फरमाया कि मेरी हैसियत जहाँ यतीम के वाली की हैसियत है, अगर मुझे जरूरत ही ना हुई तो मैं बैतुल माल से कुछ भी ना लूंगा, और अगर मोहताजी हुई तो बतौर कर्ज लूंगा, जब आसानी हुई तो वापस दे दूंगा। अल्लाह अकबर, ये तकवा की बातें। कह रहे मुझे जरूरत नहीं है तो मैं क्यों लू। इससे वो मसला भी हल हो जाता है ना कि क्या दीन की तालीम पे पैसा लिया जा सकता है। नहीं, खुद देखे इंसान क्या करूं कैसे करूं, जरूरत की बात है ना। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि मेरे पास भी ऊंट है और मेरे यहाँ जो यतीम पल रहे हैं इनके भी ऊंट हैं, मैं अपनी ऊंटनियां दूध पीने के लिए फकीरों को तोहफतन देता हूँ, तो क्या मेरे लिए जायज है कि इन यतीमों की ऊंटनियों का दूध पी लूं। आपने फरमाया, अगर इन यतीमों की गुमशुदा ऊंटनियों की को तू ढूंढ लाता है, इनके चारे पानी की खबर गिरी रखता है, इनके हौज दुरुस्त रखता है और इनकी निगेबानी करता है, तो यकीन बेशक दूध से भी नफा उठा, लेकिन इस तरह कि ना इनके बच्चों को नुकसान पहुंचे ना हाजत से ज्यादा ले। ये मत इमाम मालिक की रिवायत है। तो बात यह है कि जो जिस दर्जे पे है लेना चाहेगा, खिदमत करता है तो ले ले। मतलब जैसे आप दीन का कोई काम करते हैं, अगर आपको महसूस होता है कि आपके पास जरूरत है और आप इस वक्त में कोई और काम भी कर सकते थे, आपको पे मिल सकती थी और पैसों की जरूरत भी है, तो फिर कोई कबाहत नहीं है, ले लेना चाहिए, ताकि काम फोकस्ड होके हो, आसूदगी से हो, और उसमें कोई काम में क्वालिटी में खराब ना आए, कमिटमेंट भी हो जाए। और दूसरी सूरत, अगर आप महसूस करते हैं कि जरूरत नहीं है, मैं नहीं लेता, तो फिर दो सवाब होंगे। यानी इसको मैं एक सिंपल से सेंटेंस में पिरो दूं, आप दीन की खिदमत करते हैं, दीन की खिदमत की नजर से फिर भी कोई मुआवजा मिल जाता है, तो आपका अजर नहीं जाया होता, अजर पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। आप दीन की खिदमत करते हैं और माल नहीं लेते, तो आपको दोहरा अजर है, क्या उस वक्त के लगाने का, और उतना माल जो आपको उस पे मिल सकता था उसको सदका करने का। या अगर लेके आप सदका कर देते हैं, तो अल्लाह ताला ने इस मामले को बहुत ओपन रखा है, हर बंदा अपने हिसाब से देख सकता है कि मुझे किस चीज की कितनी जरूरत है। अब यहाँ पे वो हुक्म खत्म हो रहा है, वो मसला जिसका जिक्र हुआ था यतीमों की किफालत के बारे में, तो इस पे एक रिवायत रखूंगी सही मुस्लिम की आपके सामने, अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू जर, मैं तुम्हें ना तमाम पाता हूँ और जो अपने लिए चाहता हूँ वही तुम्हारे लिए भी पसंद करता हूँ, खबरदार हरगिज दो शख्सों का भी सरदार और अमीर ना बनना और ना कभी किसी यतीम का वली बनना। यानी जिम्मेदारी वाली चीज है। अगर किसी को अपने ईमान में शक लगता है या अपनी आदत ऐसी दिखती है कि तबीयत में केयरलेसनेस है, तो फिर वो इस अगर किसी और को मिल रही है तो उसी को लेने दे। इससे क्या पता चलता है कि इंसान को कोई भी काम लेते और देते वक्त ये देख लेना चाहिए कि क्या मैं इस काम को कर भी सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक तिलावत सुनते हैं एक बार।
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.